नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे विश्वास है कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी मित्रों का भी जो आज हमारे इस कार्यक्रम को पहली बार सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी उत्तम है और हमने यह भी देखा कि वह राजाओं का राजा है, वह हमारा मध्यस्थ करता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम सब देखेंगे कि मसीह का मनुष्यत्व। लेकिन इससे पहले आइए हम सब आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। विशेष करके हमारी प्रार्थना है उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। आप उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब वे आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुने तो उनके जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए। उनके जीवन की हर एक जरूरतों को आप जानते हैं। पिताजी, आप अपने वचन के द्वारा उनसे बातचीत करें, उनकी सहायता करें और जो इस समय बीमार हैं, निराश और परेशान हैं, जो ये आशा रखते हैं कि आपके वचन के द्वारा उन्हें चंगाई और छुटकारा प्राप्त होगा, आप उन्हें भी चंगाई दें, अपनी शांति दें ताकि प्रत्येक जीवन आप में आनंदित होने पाए। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 2 से आरंभ करते हैं जिसका विषय है मसीह का मनुष्यत्व। अध्याय 1 में प्रभु यीशु के बड़कपन को देखने के बाद हम अध्याय 2 में उसकी विनम्रता को देखेंगे। विनम्रता उसके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव रूप धारण करके वह स्वर्गदूतों से कुछ नीचे हो गया था। उसने एक कुंवारी स्त्री मरियम से जन्म लिया था। अतः प्रभु यीशु परमेश्वर का प्रकाशन और मनुष्य का प्रतिनिधि है। इब्रानियों की पत्री में हम प्रभु यीशु के बारे में दो बातों को देखेंगे। पहला, वह मनुष्य पर परमेश्वर को प्रकट करता है और परमेश्वर के समक्ष मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। मैं अपने राज्य और देश के बारे में तो नहीं जानता कि मेरा चुना हुआ प्रतिनिधि मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं, परंतु यह अवश्य जानता हूं कि मेरा स्वर्गीय प्रतिनिधि मेरा प्रतिनिधित्व कर रहा है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के पास हमारा एक प्रतिनिधि है जो सच्चा प्रतिनिधि होना एक महान बात को दर्शाता है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 पद में वचन कहता है कि शैतान परमेश्वर के समक्ष दिन रात हम पर दोष लगाता है। वह हमारे बारे में निश्चय ही बुरी बातें कहता होगा। इसलिए वहां पर हमारा एक प्रतिनिधि का होना आवश्यक है। हमने देखा है कि प्रभु यीशु स्वर्गदूतों से उत्तम है, क्योंकि वह परमेश्वर है। अब हम देखेंगे कि वह स्वर्गदूतों से कुछ कम है। वह मनुष्य के रूप में बनाया गया था। यहां हम उसकी विनम्रता को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री में 6 खतरे के संकेत हैं। संकेत इसराइल के लिए चेतावनी है कि वे मसीह में दी गई परमेश्वर की आशीषों से न चूकें। ये खतरे के संकेत इस प्रकार से हैं। हम देखेंगे, पहला, बहक कर दूर होने का खतरा, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 1-4 पद में। और दूसरा है मन कठोर करने का संकट, 3 अध्याय उसके 7 पद से लेकर 4 अध्याय के 2 पद तक। तीसरा है ऊंचा सुनने का संकट, 5 अध्याय उसके 11 पद से 14 पद में है। चौथा, भटकने का संकट, 6 अध्याय उसके 1-20 पद में। और पांचवा, तिरस्कार का संकट, 10 अध्याय उसके 26-39 पद में। और छठवां है इनकार का संकट, 12 अध्याय उसके 15-29 पद में। मेरे प्रियो, विश्वासी के जीवन के 2 स्थान है। वह जंगल में रहकर जंगल का अनुभव पाए, या वह आत्मिकता में यर्दन पार करके परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करे। इसराइल में इसका उदाहरण देखा जा सकता है। परमेश्वर ने उन्हें कादेश बरने में चेतावनी दी थी कि यदि वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से चूक गए तो परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाएंगे। मुझे मेरे एक मित्र ने कहा कि मैं यर्दन को पार करके बड़ा ही निराश हुआ था, क्योंकि वह कीचड़ से पानी की एक छोटी सी नदी है, परंतु मैं परमेश्वर का आभारी हूं कि मैंने आत्मिक यर्दन को पार कर लिया है, जो प्रभु यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा है, अर्थात बपतिस्मा में उसके साथ दफन होता हूं और उसके साथ नए जीवन में पुनर्जीवित किया जाता हूं। एक विश्वासी द्वारा यर्दन पार करने का अर्थ यही है। मेरे मित्रों, पहला खतरे का संकेत बहक जाने का संकट है। हम यह जान ले कि यह परमेश्वर की हर एक संतान के लिए है। झूठी शिक्षाओं से वे बहक जाने का संकेत देते हैं, अर्थात झूठी शिक्षाएं हमारे जीवन को बहका देते हैं। आइए आप मेरे साथ पढ़िए इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, क्योंकि यह अंतिम प्रकाशन पुराने नियम के विधान से उत्तम है। वह स्वर्गदूतों से उत्तम एक मनुष्य के द्वारा लाया गया है। इसलिए हमारे इन चेतावनियों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। अब हमारा उत्तरदायित्व अधिक है। लिखा है दूर चले जाएं, अर्थात लापरवाही दिखाएं। जीवन में कहीं भी लापरवाही करना विनाशकारी होता है। आत्मिक जीवन में सुसमाचार का संदेश सुनकर कुछ न करना अनंत विनाश का कारण है। मुझे नष्ट होने के लिए क्या करना चाहिए? आप मुझे कुछ न बताएं, फिर भी मनुष्य नष्ट हो जाता है, अर्थात कुछ न करें। एक बार एक व्यक्ति नदी में नाव चलाते समय सो गया। उसकी नाव बहते बहते जलप्रपात की ओर पहुंची और उलट गई। वह मर गया। उस समय वह जाग कर भी कुछ नहीं कर पाया था। किसी ने पूछा, मुझे नाश होने के लिए क्या करना होगा? उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसका उत्तर तो बाइबल में है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसके 21 पद में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब नाश होने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसका उत्तर है कुछ नहीं, क्योंकि हम तो नाश होने वाले परिवार में से ही हैं और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हम परीक्षा में नहीं हैं। मैं कुछ लोगों से सुनता हूं कि हम परीक्षा के समय में हैं। वह हमें परीक्षा के समय में नहीं रखता है। हम तो नाश होने वाले हैं। आज वह प्रभु यीशु को ग्रहण करने वालों को बचा लेता है। आपको नाश होने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह तो आपकी स्वाभाविक दशा है। मेरे मित्रों, जीवन के प्रत्येक पहलू में लापरवाही का घोर संकट है। मेरा एक मित्र था, वह बहुत ही अच्छा मनुष्य था, परंतु उसे कैंसर हो गया था। उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी थी, परंतु वह टालता रहा। और अंत में एक समय ऐसा आया जब कुछ भी करना संभव नहीं था। उसे चेतावनी दे दी गई थी, परंतु उसने लापरवाही की और बाद में नाश हो गया। आपकी लापरवाही जब सीमा पार कर जाती है, आप सुसमाचार सुनकर कुछ नहीं करते, तो वह अनंत विनाशकारी होता है। अनेक लोग सुसमाचार सुनकर उसे तर्क में तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु उसके बारे में करते कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं एक दिन आपकी बात मानकर प्रभु यीशु को ग्रहण कर लूंगा। यह मनुष्य बह रहा है और नदी के ढलाव की ओर जा रहा है। एक दिन बहुत देर हो जाएगी और वह जलप्रपात में पलट जाएगा। हो सकता है उसे दिल का दौरा पड़ जाए या उसके साथ दुर्घटना हो जाए, तो मसीह को ग्रहण करने का उसका अवसर समाप्त हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि सुसमाचार सुनने वाले सब लोग नए जीवन में प्रवेश करें। समय अब है, उद्धार का समय अब है। बहने में बहुत बड़ा खतरा है और इब्रानियों की पत्री का लेखक हमें चेतावनी देता है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आज आप बह रहे हैं या प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 2:2 में लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। ध्यान दीजिए, वे दो स्वर्गदूत सदोम को नष्ट होने का संदेश देने के लिए आए थे और सदोम उनके संदेश के अनुसार ही नष्ट हुआ था। स्वर्गदूत यदि कोई संदेश लाता है तो आप निश्चय जानिए कि वैसा ही होगा। अब इस प्रश्न पर आप ध्यान दें। इब्रानियों की पत्री 2:3 में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। एक प्रचारक ने अपना प्रचार आरंभ किया तो कहा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर आप नहीं दे सकते। मैं नहीं दे सकता, परमेश्वर भी उसका उत्तर नहीं दे सकता। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? बचने का मार्ग केवल प्रभु यीशु है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:6 में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। धर्मशास्त्र में यह भी लिखा है, नीति वचन 16:25 में, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे प्रियो, मनुष्य को अनेक मार्ग सीधे जान पड़ते हैं। आज ऐसे अनेक मार्ग हैं और यदि आपको कोई भी मार्ग अच्छा न लगे तो आप अपना ही एक धार्मिक पंथ शुरू कर दें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको चेले भी मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को यह सब मार्ग सीधे जान पड़ते हैं, परंतु उनके अंत में मृत्यु है। हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? नाश होने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं। लापरवाही अपने आप ही आपका विनाश ले आएगी। हम पढ़ते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर था, तब उसने कहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु ने कहा, 19 अध्याय के 10 पद में, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मेरे मित्रों, हम आगे देखते हैं, और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ है। ये सुनने वाले प्रभु यीशु के शिष्य और अन्य श्रोता थे, जिन्होंने उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान को देखा था। ये ही वे गवाह थे जो संसार में सुसमाचार सुनाने के लिए निकल पड़े थे। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। मेरे विचार में लेखक यहाँ निश्चित रूप से पेंतिकोस्त के दिन का उल्लेख कर रहा है, जब पवित्र आत्मा का वरदान प्रभावी हुआ था। इस वरदान के कारण सुसमाचार विश्वास के योग्य ठहरा था। किसके लिए? इसराइल जाति के लिए। इस पहली चेतावनी में कैसा महान सत्य छिपा है। यह चेतावनी विश्वास से बह जाने की है। सुसमाचार के महान सत्य जिन्हें हमने मान नहीं दिया है। मेरे मित्रों, हमने खतरे की एक चेतावनी देखी थी कि यदि हमने सुसमाचार सुनकर तुरंत निर्णय नहीं लिया, लापरवाही की, तो अति संभव है कि हमें दूसरा अवसर या मौका ना मिले। पल में कुछ भी हो सकता है, अतः हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी पल हमें निर्णय लेना है, अभी समय है। इब्रानियों के पत्र 2 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया। पहले तो हम यह जानने का प्रयास करें कि लेखक किस संसार की बात कर रहा है। आम धारणा यह है कि आने वाले जगत का अर्थ है स्वर्ग, परंतु यहां आने वाले जगत का मूल अर्थ है पृथ्वी, जहां मनुष्य रहते हैं। यह वही शब्द है जो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 14 पद में आया है। लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। रोमियो की पत्री 10 अध्याय के 18 पद में भी यह लिखा है, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। अतः यह शब्द जगत स्वर्ग या अनंत काल के संदर्भ में नहीं है, और न ही हमारे इस युग के संदर्भ में है जिसमें हम सब रहते हैं। यह शब्द इस पृथ्वी पर आने वाले प्रभु के राज के संदर्भ में है। पुराने नियम के जानकार इब्रानी विश्वासी जानते थे कि उसका मुख्य विषय आने वाला राज्य था, जिस पर दाऊद का वंशज राज करेगा। मसीह का राज्य प्रत्येक भविष्यद वक्ताओं का भी विषय रहा है। लिखा है, उसने उस आने वाले जगत को स्वर्ग दूतों के अधीन न किया। हजार वर्ष के राज्य को जिसे प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा, स्वर्ग दूतों को न तो पहले कभी राज्य दिया गया था और न ही भविष्य में कभी दिया जाएगा। वे पहले भी संदेश वाहक और सेवक थे और भविष्य में भी वे सेवक ही रहेंगे। यहां यही विचार व्यक्त किया गया है। अब वह भजन संहिता 8 का संदर्भ देकर हमें उस अद्भुत भजन का अभिप्राय समझाता है। यह सृष्टि की रचना से संबंधित भजन है। आइए हम पढ़ें इब्रानियों 2 अध्याय उसके 6 पद को। लिखा है, वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। पद 6-8 भजन संहिता 8 अध्याय के 4-6 पद का संदर्भ है। एक मिनट रुकिए। प्रसंगवश मनुष्य क्या है? मनुष्य इस छोटे से ग्रह पर एक अकिंचन प्राणी है। किसी ने कहा है, मनुष्य एक छोटे से ग्रह की चमड़ी पर एक छोटा सा दाना है। मेरे विचार में यह लगभग सही परिभाषा है। हम परमेश्वर के इस जगत में बहुत ही छोटे से हैं। किसी और ने भी कहा है, आप सृष्टि की सबसे छोटी वस्तु परमाणु को लेकर सबसे बड़ी वस्तु की ओर जाते हैं। तो मनुष्य वहां आधे मार्ग में आता है। मनुष्य भौतिक जगत में आधे मार्ग में ही है, परंतु महत्वपूर्ण बात तो यह है कि महिमा का प्रभु परमेश्वर का दूसरा अंग प्रभु यीशु बना जो मनुष्य है। लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। इसका उत्तर है, प्रभु यीशु मनुष्य बना, उसने स्वर्ग की महिमा का त्याग किया और इस पृथ्वी पर आया। वह स्वर्गदूत नहीं बना। इब्रानियों की पत्री का लेखक हमें यही समझाना चाहता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। मनुष्य क्या है? मेरे प्रियो, अपने आप में तो मनुष्य कुछ भी नहीं है। यदि आप उसके शरीर को अलग अलग करके उसके रसायनों को बाजार में बेच दें तो उसका मूल्य मात्र 45 रुपया ही होगा, परंतु आज महंगाई के समय में उसका मूल्य कुछ अधिक हो गया है। सच तो यह है कि उसका कोई मूल्य नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य कुछ भी नहीं है। जहां तक बुद्धि की बात है, मनुष्य सोचता है कि वह कुछ है, परंतु वह वास्तव में अज्ञानी है। मनुष्य हमारे इस विशाल जगत के बारे में क्या सोचता है? हमने इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। लोग करोड़ों रुपए खर्च करके मनुष्य को चांद पर भेजते हैं, जगत की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए, या इसलिए कि हम उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय पर विश्वास नहीं करते। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 और उसके पद 1 में मनुष्य की कल्पनाओं से कहीं अधिक बुद्धि की बात लगती है। आज मनुष्य ना तो मानसिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से कुछ है। वह ना तो अधिक कुछ उठा सकता है और ना ही अधिक कुछ कर सकता है। वह बहुत ही सीमित है। मनुष्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वह एक भटका हुआ पापी है। वह बहुत ही बुरी दशा में है, परंतु मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। उसने हमारी चिंता की क्योंकि वह हमसे संबंध बनाना चाहता था और हमारी दुर्दशा देख हमें बचाना चाहता था, क्योंकि मनुष्य पापी है और पाप में पड़ा हुआ है। और तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस जगत में भेजा ताकि हमें बचा ले, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। उसने मनुष्य को अपने हाथों से रचा है। मेरे मित्रों, आज आप सुरक्षित हैं जीवित हैं यह इसलिए नहीं कि आप भले और अच्छे व्यक्ति हैं, परंतु इसलिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया ताकि वह सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर में ले ले और वह मनुष्य होकर हमारे बदले में क्रूस पर बलिदान हुआ। वह निष्कलंक और पवित्र था। उसने अपने पवित्र लहू को हम मनुष्यों के लिए बहा दिया ताकि हम उस लहू के बहाए जाने के द्वारा से उद्धार को प्राप्त करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिना लहू बहाए उद्धार नहीं। जी हां, आज यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु आपसे कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्या आज आप उसके पास आने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, ये मौका आपके लिए है। हो सकता है यह मौका कल आपको ना मिले। यदि आप वचन सुन रहे हैं तो इसी समय आप निर्णय लें। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आप अपने निर्णय में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कहा करता मुझसे इतना प्यार। प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना